सिद्धि नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयिर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सर्वसाहूणं। परम पूज्य पंच परमेष्ठी भगवंतों की आराधना सार ग्रंथ की आचार्य श्री गुरु विद्यासागर मुनिराज विमलयर गुण समितं सिद्धं सुरसेन वंदियं सिरसा नमयूण महावीरं मूर्छं आराहणासारं। आचार्य देवसेन स्वामी आराधना सार ग्रंथ में कहते हैं, कि वे भगवंत जिन्होंने अंतिम समय में सब परिग्रहों के त्याग द्वारा उत्तमार्थ मोक्ष पुरुषार्थ को साध लिया, वास्तव में धन्य है, क्योंकि उन्हीं का ज्ञान सार्थक है, वे ही सच्चे ज्ञानी है। ज्ञान हो और जीवन में न झलके तो वो अज्ञान के समान है। शाम को कल प्रवचन सार के स्वाध्याय में निकला था, किसी के हाथ में प्रकाश है, रात्रि का समय है और सामने कुएं को देखकर भी उसी में गिर पड़े तो उस प्रकाश का कोई लाभ नहीं। और कुमार कवि द्वारा रचित आत्म प्रबोध ग्रंथ का एक काव्य इसमें था, क्या इस जगत में आत्मज्ञान से विमुख और आत्मा के अस्तित्व पर शंका करने वाले, आत्मा है या नहीं क्या पता, ऐसे कितने ही जीव नहीं है अवश्य। फिर कभी कहीं कुछ, कभी यानी किसी काल में, कहीं यानी किसी स्थान पर, कुछ यानी कम गिनती में आने वाले जिज्ञास माना प्राप्यन्ते, आत्मा संबंधी जिज्ञासा रखने वाले पाए जाते हैं। यानी आत्मा को जानने की इच्छुक, जिज्ञासा का अर्थ होता है ज्ञातुम इच्छा, जिज्ञासा जानने की इच्छा। तो जानने के इच्छुक, आत्मा को जानने के इच्छुक कुछ लोग कभी कभी कहीं कहीं कम मात्रा में मिल जाते हैं, थोड़े बहुत ऐसे लोग मिल जाते हैं और फिर कहते हैं कि आत्मज्ञा, आत्मा को जानने वाले बहुत कम होते हैं। और आत्मा को जान करके भी प्रोन्मीलद अंतर्दृश्य परमात्म मोद सुखिन, अंतर्दृष्टि जिनकी विवेक रूपी आंख खुल चुकी है, ऐसे आत्मज्ञानी जो साधना में लग गए हैं और आत्मा के परम आनंद से जो सुखी हो चुके हैं, वे कितने होते हैं? तो द्वित्राहस्यो, दो तीन तो हो सकते हैं, बहुवो यदि यदि बहुत होंगे तो, दो तीन से अधिक निकले तो कहते हैं त्रिचतुरा, तीन या चार होंगे। दो तीन से अधिक मिलेंगे तो तीन या चार मिल जाएंगे, और ते पंचशा दुर्लभा, पांच या छह मिलना तो मुश्किल है। फिर आचार्य समन्तभद्र स्वामी की कारिकाओं के माध्यम से ये बता रहे हैं कि आपको संलेखना करनी है, चार आराधनाएं आराधनी है, तो फिर इस क्रम से चलो। सबसे पहले शुद्ध मन होकर, शुद्ध मन यानी वैराग्य और ज्ञान जिस मन में होता है वो शुद्ध मन होता है। शुद्ध मन होकर स्नेहम अपहाय, जिन जिन के प्रति आपका स्नेह है उसको छोड़ दो। क्योंकि स्नेह का बंधन बेड़ियों के बंधन से भी मजबूत होता है। बेड़ियों को तो किसी उपाय से काटा जा सकता है, लेकिन स्नेह को तोड़ना जन्म जन्मांतरों में भी दुष्कर होता है। अकृत पुण्य की माता मृष्टदाना जीवन भर आरिका रही उस घटना के पश्चात, जब उसको शेर ने खा लिया था अकृत पुण्य को, लेकिन आरिका होते हुए भी अंत अंत में जब संलेखना के दिन आ गए तो उसने निदान कर लिया कि वही पुत्र आगामी भव में भी मेरा पुत्र बने। अब बताइए, आर्यिका बनकर के स्त्री पर्याय से छूट सकती थी, लेकिन अब मेरा पुत्र बने, मैं उसकी मां बनूं, ये जो भावना थी, उस भावना ने उसको वापस स्त्री बना दिया। आर्यिका पद में उन्होंने तपस्या की, संलेखना की, तो उसके परिणाम स्वरूप देवगति तो मिल गई, लेकिन वहां से देव पर्याय से वापस जब मनुष्य पर्याय में आना हुआ तो यहां आकर के पुनः स्त्री पर्याय में आ गई। आदि पुराण के उत्तरखंड में जयकुमार सुलोचना का जो चरित्र है वो अवश्य पठनीय है। उसमें आप पढ़ करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कई बार वो मोह की जो बेड़ी है, स्नेह का जो धागा है, वो तपस्या करने के बाद भी टूट नहीं पाता। तो एक ही जीव आर्यिका बनता है, फिर देवगति में जाता है, वापस स्त्री बनता है, फिर आर्यिका पद अंगीकार करके फिर देव पद को प्राप्त होकर पुनः मनुष्य पर्याय में फिर आर्यिका। कितने आश्चर्य की बात है, तीन तीन बार आर्यिका, लेकिन पता नहीं आयु बंद के समय और फिर मरण के काल में या फिर देवगति में जाने के उपरांत कोई ऐसा विचित्र परिणाम अंदर उत्पन्न हो जाता है पुनः मिथ्यात्व में आकर, क्योंकि स्त्री पर्याय जो होती है वो अनंतानुबंधी कषाय से बंधती है। स्त्री वेद का बंध याद रखना, नपुंसक वेद का बंध मिथ्यात्व कर्म से होता है। मिथ्यात्व कर्म से 16 कर्मों का बंध होता है मिथ्यात्व के उदय से, और अनंतानुबंधी से 25 कर्मों का बंध होता है। उन 25 में एक स्त्री वेद, त्रियंश है, त्रियंश गति, ये सब अनंतानुबंधी कषाय से बनने वाली पद्धतियां। और इसके अतिरिक्त नीच गोत्र होता है, उसका बंध भी अनंतानुबंधी कषाय से होता है। अब अनंतानुबंधी कषाय का नाम तो आपने सुना है। कषायों के चार भेद हैं, ऐसे तो चार क्रोध मान माया लोभ चार होते ही हैं, लेकिन ये चार प्रकार के होते हैं। एक अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, फिर दूसरा अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ। अब क्या अनंतानुबंधी का संस्कार काल 6 महीने से अधिक होता है और उसकी जो आगे की सीमा है वो अनंत भवों तक के जा सकती है। अनंत अनंतानुबंधी का जो संस्कार, जैसे कमट का जो वैर था वो उस कमट के जीव के 11वें भव तक चला और उस उतने समय में मरुभूति जो उनका छोटा भाई था वो जीव 10 भव धारण कर पार्श्वनाथ तीर्थंकर के पर्याय में आ चुका था वो जीव। तो इनके पार्श्वनाथ भगवान के 10 भव हुए थे और उस कमट के 11वां भव था, तो वैर शांत नहीं हो रहा था। अब वो तो भगवान को केवल ज्ञान हो गया, तो फिर केवल ज्ञानी के सामने किसी की ताकत चलती नहीं, तो फिर इसका वैर ठंडा पड़ गया ना। अनंतानुबंधी कषाय से जो वैर उत्पन्न होता है वो अनंत भवों तक भी चला जाता है, संख्यात असंख्यात और अनंत तक चला जाता है। ये बात अलग है कि अनंत भवों तक कोई भी जीव लगातार त्रस पर्याय में नहीं रहता है, बीच में कई बार उसको स्थावर पर्यायों में भी जाना पड़ता है, लेकिन वो कषाय जो अंदर संस्कार रूप में पड़ी हुई है वो जब भी उदय में आएगी उस जीव के सामने, जो सामने जो प्रतिपक्षी है, तो बस वो वापस पूरा ज्यों का त्यों हो जाएगा। फिर वो वासना वो संस्कार उसका प्रबल हो जाता है। अप्रत्याख्यानावरण का संस्कार काल 6 महीने है, 15 दिन से ऊपर और 6 महीने तक रह सकता है, 6 महीने के ऊपर नहीं जाएगा। और कोई भी सम्यक दृष्टि जीव होगा उसको कम से कम अप्रत्याख्यानावरण का तो उदय रहेगा अगर असंयमी है तो, अनंतानुबंधी नहीं रहती सम्यक दृष्टि में, इसलिए 6 महीने के ऊपर वैर रखने वाला जीव मिथ्या दृष्टि होता है। लक्ष्मण के अवसान पर श्री राम 6 महीने तक व्यथित रहे लेकिन फिर एकदम संभल गए, शांत हो गए। सरयू नदी के तट पर लक्ष्मण का अग्नि संस्कार करके राम ने फिर अंतिम पुरुषार्थ किया था, मोक्ष पुरुषार्थ। और फिर कल जैसे एक प्रश्न पूछा था ना देवकृत उपसर्ग का उदाहरण, तो उसमें श्री राम मुनि थे। जिनको जानकारी नहीं होगी उनको लगा होगा कि राम ने मुनि अवस्था में किस देव के उपसर्ग को सहन किया, तो उसका समाधान है सीता जी के देव। फिर शंका होगी कि सीता जी ने काहे को उपसर्ग किया होगा, फिर उसका उत्तर यह है कि सीता जी ने उनके मन में शुक्ल ध्यान की स्थिति न बनने देने का प्रयास किया, क्योंकि अगर अभी इनको शुक्ल ध्यान हो गया तो फिर ये मोक्ष चले जाएंगे और हम संसार में रह जाएंगे। ऐसा क्यों ना करें कि साथ में ही जाएं मोक्ष, तो साथ में मोक्ष जाने के मोह से उसने उपसर्ग किया था, तकलीफ देने के लिए नहीं। पर मोह जागृत हो जाए तो थोड़ा सा राग होगा तो फिर केवल ज्ञान नहीं होगा, केवल ज्ञान नहीं होगा तो फिर संसार में रहेंगे और फिर दोनों साथ में चलेंगे। देखो कैसे विचित्र बात, जब सीता जी ने उस पर्याय में दीक्षा ली थी, संन्यास धारण किया था, तब वो राम का मोह तोड़ करके निकली थी। लेकिन अब देखिए संयम की महिमा है कि जब तक संयम ही रही तब तक राम को याद भी नहीं किया, और उसके बाद जब संलेखना करके 33 दिन उपवास किए अंत में, 33 दिन किसको कहते हैं, उतने उपवास करके अंत में जब देवायु में चली गई, 16वें स्वर्ग में प्रतीन्द्र पद को प्राप्त किया, तब वहां जाकर के जब स्मरण किया उन्होंने, और फिर यहाँ आकर के फिर भगवान राम जब केवली हो गए थे तो उनके चरणों में आकर के वंदना की, कई शंकाओं के समाधान भी निकाले, और फिर उनको राम के केवली होने के पूर्व जब वो यहाँ से देवलोक में चली गई थी तो स्त्री पर्याय तो छूट चुकी थी, तब उनको लगा कि राम ऐसा ध्यान लगा रहे हैं अभी ये तो मोक्ष चले जाएंगे और फिर हमारा मिलना नहीं हो पाएगा, तो कुछ ऐसा उपाय करें कि दोनों साथ में मोक्ष जाए। फिर उनने ऐसा मोहवश उपसर्ग किया था देवकृत उपसर्ग। तो अप्रत्याख्यानावरण कषाय प्रत्याख्यानावरण कशा भी होती है, अप्रत्याख्यानावरण की अंतिम सीमा 6 महीने होती है। तो कोई भी जैनी भाई अगर 6 महीने से ज्यादा लड़ता है एक दूसरे से, या फिर कोई 6 महीने पहले घटना हुई हो और आज तक उसके अंदर वैसी की वैसी कषाय रहती है स्मरण करते ही साथ, बिल्कुल वही भड़क जाता है उसका गुस्सा, ये द्वेष संबंधी हुई, स्नेह संबंधी भी हो सकता है, तो उतना अगर बना रहे तो फिर वो अप्रत्याख्यानावरण कषाय नहीं है, वो अनंत अनुबंधी है। क्योंकि अप्रत्याख्यान की अंतिम सीमा क्या थी? 6 महीने। 6 महीने से ज्यादा अगर वैर चल रहा है, अगर 5 साल से बातचीत नहीं हो रही, बंद हो रही, बंद है, और अगर उसकी बात छेड़ो तो फिर एकदम आवेश आ जाता है, उसकी बात मत करोगे, कोई और चर्चा करोगे यहाँ, तो ये जो कषाय है ये सम्यक के अभाव को सूचित करने वाली है। लुई सिंह ने लिखा है कि वो सामने वाला व्यक्ति कैसा भी हो, उसने जो कुछ भी आपके प्रति किया हो, आप यदि उसको क्षमा करते हैं तो फायदा आपको होने वाला है। उसको अपने कर्मों का फल मिलने दो, वो जैसा करता है वैसा उसको भरना पड़ेगा, लेकिन आप अपना फायदा अगर चाहते हो तो आप क्षमा कर दो, उसको रिलीज कर दो अपने उसमें से, उसको मुक्त कर दो अपने वैर के बंधन से, उसको छोड़ दो। उसको छोड़ने से वो नहीं छूटेगा, आप छूट जाएंगे। तो 6 महीने से अधिक खतरनाक काम, ये बात आप लोग देख लीजिएगा, अपने अंदर निरीक्षण करके देख लेना क्या स्थिति है। वैसे तो बहिरंग श्रद्धा तो रहती है जैन धर्म के प्रति, लोगों की परिवार में उत्पन्न हुए हैं तो देवशास्त्र गुरु के प्रति झुकाव रहता ही है, पर अंतरंग में जो गुणस्थान वाली बात है, वो गुणस्थान अगर 6 महीने से अधिक किसी का वैर हो तो बन नहीं सकता, वो फिर मिथ्या दृष्टि गुणस्थान रहेगा। इसलिए क्षमा करना ही हितकारी है, और यही कारण है कि 3 बार पर्यवेक्षण पर्व, क्योंकि एक बार अगर रखो तो फिर साल भर निकल जाए, फिर 6 महीने की वो अवधि क्रॉस हो जाए, तो 3 बार पर्यवेक्षण पर्व आते हैं तो फिर देखो आप पूरे सेटल हो जाते हैं व्यवस्थित। चैत्र के बाद कितने दिन में लगेगा पर्यवेक्षण? वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, तो 5 महीने में फिर क्षमावाणी आ जाएगी। तो मतलब वो सम्यक दृष्टि की सीमा में ही आपका वो हिसाब चुक जाए। 6 महीने तक रह सकता है वैर सम्यक दृष्टि जीव, लेकिन ये मत सोचना कि अभी तो मेरे 6 महीने हुए नहीं वो लड़ाई, क्योंकि फिर हो सकता है कि 6 महीने निकल जाए फिर भी आपको लगे कि नहीं अभी नहीं छोड़ना उसको, फिर काम बिगड़ जाएगा। इसलिए जब भी क्षमा वाणी आती है आप तुरंत उसका लाभ लीजिए। कई बार तो पता ही नहीं चलता कि कब क्षमा वाणी आई और गई, जैसे अभी माघ महीने में जब पर्यवेक्षण पर्व आया तो कम लोगों को जानकारी थी कि अभी पर्यवेक्षण चल रहा है। फिर वो महावीर जयंती आती है उत्तम आकिंचन के दिन, रामनवमी आती है, ये सब पर्व जो आते हैं ये उसी पर्यवेक्षण के दौरान आते हैं। ये तो वसंत पंचमी से एक पर्यवेक्षण पर्व प्रारंभ होता है, एक चैत्र पंचमी से प्रारंभ होता है शुक्ल पंचमी से, और चतुर्दशी तक चलता है। उसके बाद क्षमा वाणी कर ही लेना, वो क्षमा केवल वाणी में न रहे, वाणी क्षमा नहीं कहा उसको, क्षमा वाणी क्यों कहा? क्योंकि पहले क्षमा हो जाए फिर उसको वाणी में ला करके क्षमा कर दो। और वाणी में लाना इसलिए जरूरी है कि सामने वाले का भी मन अपने निमित्त से अधिक कलुषित न रहे। है तो उसकी गलती, वो कषाय से दुखी है, वो कषाय से ही आपके प्रति ऐसा सोच रहा है, लेकिन तो भी आप अपनी तरफ से उस औपचारिकता पूरी कर लो ना, क्या बुराई है। और क्षमा कर देने के बाद आप देखिए उसका जो अनुभव है वो शब्दों में वर्णन नहीं होता, वो सिर्फ अनुभव करने वाला जानता है कि क्षमा करने में क्या होता है, अपने अंदर क्या स्थिति बनती है। तो सबको बचपन से जो जो घटनाएं हुई सबको याद करो। हमने तो कई बार दीक्षा के बाद भी ध्यान करके स्मरण किया है कि कहीं कोई ऐसी चीज अटकी तो नहीं है पुरानी, उसको भी क्षमा कर देते हैं, उसको भी क्षमा कर देते, पूरी क्षमा करके फिर आगे बढ़ जाओ, तो फिर बढ़ने में बहुत सहूलियत हुई, क्योंकि ज्यादा वजन लेकर पानी में तैर नहीं सकता कोई, और अपने को संसार समुद्र तैरना है, तो समुद्र को तैरने के लिए इतना सारा बोझ लेकर कहाँ तैरोगे? तो इसलिए सबको क्षमा करते हुए छोड़ते चले जाना। उनको आप छोड़ रहे हो, लेकिन वास्तव में क्या है कि आप अपने को छुड़ा रहे हो, खुद छूट रहे हो। तो स्नेह और वैर के बंधनों को तोड़कर, कुटुंब परिवार को छोड़कर और परिग्रहों का त्याग करके, स्वजनों को और भी संबंध में आने वाले जितने लोग हैं उन सबको क्षमा करके, पहले तो अपने हृदय से उनको क्षमा कर दो। ऐसा नहीं कि वो क्षमा मांगे तब हम क्षमा करेंगे, ये भी कषाय भाव है, मान कषाय है। मांगे तो सही, फिर हम करते हैं क्षमा, हम तो बैठे हैं क्षमा करने के लिए। बैठे हो तो अभी बैठे बैठे क्या कर रहे हो इतने दिन से, करो। तो शुद्ध मन होकर क्षमा कर देना, क्योंकि कौन किसका स्थायी शत्रु है, कौन किसका स्थायी मित्र है, ये मित्रता और शत्रुता शाश्वत नहीं रहती। कभी कभी घनिष्ठ मित्र भी कट्टर शत्रु बन जाते हैं, माने जो सामान्य शत्रु है उससे भी अधिक तीव्रता रहती है उनकी शत्रुता में। अगर मित्र मित्र में दुश्मनी हो गई ना, तो वो दुश्मनी दुश्मनों की दुश्मनी से भी बुरी होती है। तो क्षमा करने में पहला कदम अपन उठा ले, तो उसमें ऐसा लगता है कि भाई किसी छोटे व्यक्ति से हम क्षमा मांगेंगे तो कैसा लगेगा, लौकिक दृष्टि से मान प्रतिष्ठा के विरुद्ध होगा। लेकिन आप लौकिक दृष्टि पर ज्यादा विचार करेंगे तो फिर उस लौकिकता में ही अटके रहेंगे और मृत्यु तक संलेखना की स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकेंगे, क्योंकि लोक व्यवहार निभाना बहुत जटिल होता है। एक के बाद एक वो लाइन लगी रहती है, कुछ ना कुछ आपको करना ही पड़ेगा व्यवहार निभाने के लिए। तो एक स्थिति ऐसी आ जाए जीवन में कि जहां पर बस आपने जितना अपना कर्तव्य था वो पूरा कर लिया। अब इसमें पहले भी एक काव्य आ चुका है जिसमें लिखा था कि अगर तेरा स्त्री जनों से मोह टूट चुका है, अगर तेरे अंदर संसार के प्रति विरक्ति है, ऐसा एक काव्य आया था ना, तो फिर घर में काय को बैठा है, तपस्या कर। फिर अब काय को मोह में पड़ा है, जब तेरा किसी से लगाव नहीं है तो फिर क्यों नहीं छोड़ रहा है? नहीं छोड़ रहा और कह रहा है कि लगाव नहीं है, तो फिर लगाव कैसे नहीं है? लगाव नहीं है तो फिर क्यों पकड़ा है? पकड़ा है इसका मतलब कुछ तो है। और प्रियई वचने क्षमयेत, मीठे वचनों से उनके पास जाकर क्षमा मांग लो, अपने हृदय से उनको क्षमा कर दो। और मन में ऐसा नहीं कि भाई तुम लोग मेरे को क्षमा कर देना, उनके पास जाकर के उनसे मिलकर मीठे वचनों द्वारा उनसे क्षमा याचना कर लो। और इतना सब करने के बाद, अब अगर मान लो इतना करने के बाद भी कोई आपको क्षमा न करे, तो फिर ये उसके सिर का भार है, फिर आपको उसके बाद फिर कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर उसका मन इतना कलुषित है कि वो आप हृदय से क्षमा मांग रहे हो, फिर सब कुछ स्पष्ट करते हुए क्षमा मांग रहे हैं, और क्या है कि क्षमा मांगते समय कोई कंजूसी नहीं करना, जो कुछ है खुल करके सब कुछ स्पष्ट कर देना कि मेरे मन में ऐसा भाव आया था और उस समय आया था, अब मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं है और आगे भी ऐसे विकार आने की संभावना नहीं, क्योंकि मैं सब कुछ त्याग करके जा रहा हूँ और मेरा लक्ष्य संलेखना का, मैं अपना भाव नहीं बिगाड़ना चाहता, मैं मनुष्य भाव की कीमत समझ गया हूँ और अब मुझे कषायों की असारता स्पष्ट समझ में आ गई, आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ, हो सके तो आप करना, हो सके तो बोल सकते हैं आप, उसमें कोई बुराई नहीं है, तो उसमें उसको बाध्य नहीं होना पड़ेगा क्षमा करने के लिए। फिर उसको लगेगा कि उसने तो मुझे स्वतंत्रता दी थी क्षमा करने के लिए, तो क्षमा करना या ना करना मेरे हाथों में, और उसने तो पूरे दिल से क्षमा मांग ली है। और क्या है कि क्षमा मांगते समय अपने निमित्त से जो दोष हुआ है उसको स्पष्ट करना, और कभी अगर कोई गलत फहमी हो तो फिर दो तीन बातों को उसके सामने प्रस्तुत कर देना कि उस समय स्थिति ऐसी थी, मैं किसी की बातों में आ गया था और मैंने तुम्हारे बारे में जल्दी निर्णय ले लिया था। ऐसी कई स्थितियां होती है, अब उसमें ये तो एक हम उदाहरण दे रहे हैं, और भी कोई स्थिति हो सकती है, तो उस निर्णय के कारण मैंने ऐसा बर्ताव किया था। फिर बाद में जब मुझे मालूम पड़ा कि तुम ऐसे नहीं हो, तो फिर मुझे पश्चाताप हुआ और बहुत समय से मैं पछता रहा हूँ। आज मैं उस पश्चाताप को तुम्हारे सामने रखता हूँ कि मुझे हार्दिक पीड़ा है कि मेरे निमित्त से ऐसा हुआ है, और तुम हो सके तो क्षमा करना, मेरा मन तुम्हारे प्रति बिल्कुल निर्मल है। शांतिपद प्रदर्शन में संलेखना के समय जब वो साधक या क्षपक अपना क्षमा भाव प्रकट करता है, उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। और वर्णी जी के उस पत्र में भी वो बात आई है जो हमने आपको बतलाई थी कि मेरे निमित्त से यदि आपको किसी को भी कोई पीड़ा पहुंची हो, क्योंकि संपर्क में रहने पर कभी कोई बात अपने मन के अनुकूल होती है, कभी प्रतिकूल भी होती है, क्योंकि सबके अंदर कोई ना कोई इच्छा है, तो सबकी इच्छाएं एक साथ तो पूरी हो नहीं सकती और एक व्यक्ति की भी सब इच्छा कभी पूर्ण नहीं होती। तो इच्छा के प्रतिकूल कुछ हो गया तो फिर वो बात मन में लग जाती है, उसका बुरा मान लेते हैं, तो उसको भी क्लियर कर लेना है। क्योंकि संलेखना धारण करने के लिए मन का हल्का होना बहुत जरूरी है, भारी मन से काम नहीं बनेगा। तो फिर मन को भारी क्यों बनाए रखें? कितने दिन हो गए, कितनी चीजें भरी हुई, अब उसको खाली करते जाना, ये समय आ गया है खाली करने का। इतनी जिनवाणी सुनने मिली है वो आपके उस पुण्य से मिली है जो आपको उस तरफ ले जा रहा है, हल्का बनने की तरफ। और अगर आप ये समझे कि भाई मिली है फिर आगे भी मिल जाएगी, तो ठीक है, अगर इतना विश्वास है आपको कि फिर ऐसा मौका मिल जाएगा, तो देखो फिर इंतजार करो, देखना फिर मिलता है कि नहीं मिलता है। क्योंकि कुछ कहा नहीं जा सकता भविष्य के बारे में दावे के साथ। फिर ये तो हो गई उन संबंधियों से अपनी चर्चा। अभी कभी कुछ अच्छा शब्द से और भी ले लो कि कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई परिचय नहीं है, लेकिन कभी बाजार में जाते जाते किसी के साथ कोई ऐसा मन मुटाव हो जाए, किसी व्यक्ति के साथ, मान लो कोई स्कूटर वाला है, अब किसी कारण से वो एकदम आपके बाजू से निकल जाए और एकदम आप बाल बाल बच जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है पता? वो तो स्कूटर तो आगे निकल गया लेकिन आपकी नजर उसके नंबर प्लेट पर रहती है, फिर उसकी तरफ देखते हैं आप, चेहरा भी याद रखते हैं और आपको लगता है कि आपने सबको क्षमा कर दिया। फिर मान लो कोई ऐसा कंप्यूटर या कोई ऐसा यंत्र आ जाए जिसमें आपके संपर्क में आने वाले सब लोगों के फोटोग्राफ्स ऐसे लाइन से निकलते जाए, तो जैसे ही वो चेहरा आएगा तब आप अगर अपने भावों को पढ़ें तो पता चलेगा कि आपने उसको क्षमा किया है कि नहीं। जैसे ही वो आएगा उसकी स्पीड कम कर देना, फटाफट जो फोटोज खिसक रहे हैं ना कम कर दी स्पीड, उसको पॉज करके देखना, ये कौन है, कोई अच्छा आदमी तो नहीं है, बहुत बेकार आदमी, ये क्या है, ये सेल्फ रीडिंग है। तो इसी को आपको बार बार ध्यान में बैठकर करते रहना, बार बार सेल्फ रीडिंग करोगे, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको मैं क्षमा नहीं कर पा रहा हूं, और उनको मैं क्षमा नहीं कर पा रहा हूं ये उनकी गलती है या मेरे ही अंदर की कोई कशाएं है जो क्षमा नहीं करने देती। जब तक थोड़ा भी ऋण लेकर आप जाएंगे तब तक आपको छुटकारा नहीं मिलेगा, इसलिए ऋण मुक्त होना ही हितकर है। और आप उनसे मिलिए जो ऋण मुक्त है, उनके आनंद को देखिए जीवन के, तो आपको समझ में आए कि वास्तव में ये पैर छोड़ना जो कठिन है, कठिन तो है लेकिन छोड़ने के बाद जो स्थिति आती है उसमें तो कुछ अलग ही हल्कापन और आनंद है। तो इस जीवन में ये काम हो जाए तो कितनी अच्छी बात है, नहीं तो वो तो चलता ही रहता है। देखो कई जन्मों से कई लोगों संबंधी है, अपन यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना ये कई जन्मों के रिश्तेदार हैं। क्यों है? क्योंकि क्योंकि वहां उसका पूरा हिसाब बराबर नहीं हो पाया था। वो अधूरा छोड़ करके आए थे, तो अभी भी अपन रिश्तेदार बने हुए। और एक बार अगर सबसे टूट जाए अपना, सबको मध्यस्थ भाव प्रेम से छोड़ो, ऐसा नहीं है कि सब कषाय पूर्वक छोड़ो कि चलो मैं छोड़ रहा हूं तुमको, निकलो यहां से बाहर, ऐसा नहीं है। बड़े प्रेम से, ठीक है अपना इतना संबंध रहा, अब मेरा स्टेशन आ रहा है तो मुझे तो जाना है, अगर तुम्हें भी इसी स्टेशन पर उतरना हो तो आ जाओ साथ में। पर सब लोग एक स्टेशन पर कहाँ उतरते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग स्टेशन होते हैं। तो अभी अपने को तो मुक्ति के स्टेशन पर उतरना है, तो फिर वो अगर नहीं उतर रहा है तो प्रेम से उसको बोल दो जय जिनेन्द्र, अलविदा, फिर मिलेंगे, मतलब वहां मोक्ष में सिद्धालय में फिर मिलेंगे। तुम देर से आ रहे हो इसलिए मुझे तो इस बात का दुख है कि तुम अभी नहीं आ रहे, लेकिन ठीक है कभी ना कभी तो आओगे, फिर मिलेंगे। और दूसरी बात, अगर वैर न छूटता हो फिर भी इतना सब करने के बाद, तो फिर अपने मन में ये विचार करना कि ये सामने वाला जीव अगर भव्य होगा, और मान लो ये 7-8 भाव में मोक्ष जाने वाला और मैं 4-5 भाव में जाने वाला हूं, तो भी, और ये भी संभावना है कि मैं 7-8 भाव में जाऊं और ये 4-5 में चला जाए, ऐसा थोड़ी है कि जो बैर बांधने वाला है वो सीनियर हो और वो सामने वाला जूनियर हो, कौन जानता है कि कौन पहले चला जाए। तो वो अगर पहले चला गया तो मुझे बाद में जाकर वहां मिलना पड़ेगा उससे, और मैं अगर पहला चला गया तो फिर वो आकर के मिलेगा। तो जब अंत में सबको एक ही घर में मिलना है, सिद्धालय में अंत में सबको वहीं जाना है, एक ही स्वरूप होना है, एक ही रूप होना है, तो फिर आज मैं अगर इसके प्रति वैर करता हूं तो एक दृष्टि से सोचा जाए तो मैं भविष्य के सिद्ध परमात्मा से वैर कर रहा हूं। बात आ रही है समझ में? मैं किसी के भी प्रति अगर वैर कर रहा हूं, अब ये तो केवली मना पर एक ज्ञानी जानते होंगे कि वो अगर निकट भव्य है तो कब जाने वाला है, पर अगर मैं वैर करता हूं फिर मैं भावी परमात्मा से वैर कर रहा हूं। तो मेरे जैसा दुर्बुद्धि कौन हो सकता है जो भगवान से वैर करे? वैर दुश्मन से किया जाता है, प्रभु से कभी नहीं किया जाता। तो ये भावी परमात्मा है, इससे वैर कैसे करूंगा? भावी परमात्मा से वैर कैसा? कभी फिर सामने आ जाए वो, पर वापस वो चीजें याद आने लग जाए तो वो घटना तो बहुत पुरानी हो गई, हो सकता है 2.5 वर्ष बीत गया उस घटना को, हो सकता है 20 वर्ष बीत गया, लेकिन इतनी पुरानी घटना को लेकर अब उस समय उसके जिस कर्म का उदय था उस कर्म के उदय में वैसी पर्याय बन गई, तब उस क्षणिक पर्याय को लेकर आज तक मैं उसकी आत्मा से बैर कर रहा हूं। पर्याय तो क्षण मात्र के लिए आई थी जिसकी वजह से मुझे ठेस पहुंच गई, और मुझे जो ठेस पहुंची वो मेरी कषाय से पहुंची, पर मैंने उससे वैर बांध लिया और अब तो वो आमूल चूल बदल चुका है। माने अब उसके शरीर में भी एक परमाणु ऐसा नहीं है जो उस समय था 20 साल पहले, क्योंकि एक वर्ष में मनुष्य के शरीर के 100 में से 98 परमाणु बदलकर नवीन आ जाते हैं, आकृति वैसी की वैसी रहती है, बिल्कुल मिलती जुलती आकृति आपको दिखेगी चेहरे की। 3 साल बाद आप किसी से मिलो, अरे तुम तो वही हो, वैसा लगेगा देखने में, लेकिन परमाणु वो नहीं रहते। अभी जो रिसेंट रिसर्चेस हुए हैं, जो शोध कार्य हुए हैं, दीपक चोपड़ा की पुस्तक है एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड, उसमें ये बात लिखी हुई है कि 1 साल में अपने शरीर के 98% परमाणु बदल कर नए हो जाते हैं। तो फिर 20 साल पुराना जो शरीर था जिसको देखकर आपने वैर बांधा था उसके प्रति, क्योंकि आपने उसकी आत्मा को तो देखा ही नहीं था, तो उस समय जो वैर बांधा था आज जो दिख रहा है वो उसका वो शरीर भी नहीं है, उसके सारे परमाणु बदल चुके हैं, तो किससे वैर करोगे? और मान लो उसके जीव से आपने वैर बांध लिया था, शरीर और आत्मा सहित उस जीव से आपने वैर बांध लिया था, तो फिर उस जीव की उस समय की पर्याय और आज की पर्याय पूरी तरह बदल चुकी है, उसके भाव बदल चुके हैं, उसका ज्ञान बदल चुका है, उसके अनुभव बदल चुके हैं, उसके रिश्ते बदल चुके हैं, सब कुछ तो बदल गया है। फिर कब तक वैर रखोगे? वैर आपका उससे था, पर अब जब वो है ही नहीं तो किससे वैर कर रहे हो? मतलब ये हुआ कि किसी टोपी वाले ने आपको परेशान किया था, अब जो भी टोपी वाला दिख रहा है उसको आप परेशान कर रहे हो। क्या ये न्याय है? तो उसको छोड़ देना। उसको छोड़ने से अपन छूट जाते हैं, सबसे खास बात ये है। और अपना लक्ष्य क्या है? छूटना ही तो लक्ष्य है, छोड़ना तो नहीं, छूटना ही अपना लक्ष्य है। निवृत्ति रूपम यतस्तत्व। तो मधुर वचनों से क्षमा मांग ली, और फिर अगर वो क्षमा नहीं करता तो ये उसके सिर का भार है। और फिर उसके बाद फिर अपन ये मत सोचो कि उसने क्षमा नहीं किया, उसको इस कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, ये भी कष्ट है। वो क्षमा नहीं कर रहा है ना, अब उसको इसका फल मिलेगा, अब उसको इसका फल मिलेगा। ये फल तक आपने क्यों सोचा? आप कौन है उसका हिसाब लगाने वाले? फल तो कर्मों का मुझे भी मिलता है और सभी को मिलता है, लेकिन उसने क्षमा नहीं किया तभी आपको उस फल की याद आ रही है, क्या कारण है? ये भी कषाय है। नहीं, उसने मुझे क्षमा नहीं किया, क्षमा न करने के लिए भी मैं उसको क्षमा करता हूं। आई बात समझ? क्षमा न करने के लिए कभी कभी अपन क्षमा नहीं करते, फिर देखो इसने मेरे को क्षमा नहीं किया, बस वहां एक नवी गांठ बांध ली। पुरानी थी उसको तो आपने छोड़ने के लिए उससे क्षमा मांगी, और उसने क्षमा नहीं किया तो आपने नई गांठ और बांध दी। बहुत टेढ़ी खीर है क्षमा। क्षमा शब्द बोलना जितना सरल है, बस तो उच्चारण की अपेक्षा से कुछ लोग इसका भी अशुद्ध उच्चारण करते हैं, लेकिन चलो बोलना फिर भी सरल है। लेकिन क्षमा तब तक करना संभव नहीं है जब तक अपने हृदय में वात्सल्य न हो। वात्सल्य के बिना क्षमा नहीं होती, और सरलता के बिना क्षमा मांगी नहीं जा सकती। क्षमा मांगते समय सरलता चाहिए, क्षमा करते समय वात्सल्य। अब वात्सल्य में भी कई बार उलझ जाते हैं ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि कैसे हम सबके प्रति वात्सल्य रखें? जो अपने लोग हैं उनसे तो हमें लगता है कि हम प्रेम से रहें, लेकिन सबके साथ कैसे प्रेम बर्ताव करें? लेकिन नहीं, ये भी कषाय है। इसको हटा करके देखो, आप एक माँ की नजर से देखो सबको। किसी न किसी जन्म में अपन माँ रहे हैं सामने वाले की, उस दृष्टि से देखो कि ये मेरा किसी जन्म का पुत्र है या पुत्री है। किसी को भी देखते समय जिसके भी प्रति कषाय हो रही है तो उसको माँ की नजरों से देख सकते हैं। थोड़ा मन को एकाग्र करना पड़ेगा, फिर देखो कैसा लगता है। गलती की है, अपनी ही संतान है। मां का संतान से बैर नहीं होता, क्रोध आता है, मां को डांटती है, पीटती भी है, लेकिन उसके बाद फिर पीटने वाली उसी मां की आंखों में आंसू भी आते हैं। ये हमें पता नहीं था पहले कुछ भी, लेकिन एक बार एक माँ ने आकर के बताया, वो बेटा भी सामने था उसमें, बोले कि इतना परेशान करता है कि एकदम मारने की इच्छा होती है, और फिर कभी कभी मेरे हाथ चल जाते हैं, लेकिन जब ये रात में सो जाता है तब मुझे आंसू आते हैं। तो उस दृष्टि से अपन देखो किसी को भी, तो फिर अपने आप क्षमा हो। अब कोई भी पर्याय हो, नारी की पर्याय हो, पुरुष की पर्याय हो, कुछ भी रहो, लेकिन अनादिकाल से संसार में भटकते समय सब लोग सब कुछ कर चुके हैं, इसलिए सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। पद्म पुराण ग्रंथ में तो लिखा है कि समुद्रों में जो रेत के कण हैं वो भी अपने रिश्तेदारों की गिनती से कम है। क्या कहा? सब सागरों में जितने रेत के कण हैं उनको अगर गिना जाए तो कितनी विशाल गिनती आएगी। लेकिन संसार में भटकते समय जो जो रिश्तेदार अपन ने बनाए हैं उनको गिने जाए, उनको गिना जाए, तो रेत के कणों की गिनती उन रिश्तेदारों की गिनती के आगे कम हो जाएगी। तो फिर सब अपने ही तो है, अथवा दूसरी दृष्टि से देखो तो कौन अपना है और कौन पराया है, अपन सबके संबंधी बन चुके हैं। इसलिए सबके प्रति वही भावना रखो जो कल्याण की भावना, मैत्री भाव। मैत्री भाव का अर्थ क्या होता है? हित चिंतन, सामने वाले के की भलाई का विचार करना मैत्री भाव है। तो मैत्री शब्द में कभी कभी एकदम स्पष्ट नहीं आता ना भाव, तो उसको सरल भाषा में ऐसा समझ लो, हित चिंतकता। मैत्री भाव बराबर हित चिंतकता, यानी दूसरों की भलाई का विचार करना। इसीलिए कहा कि सब जीवों का मैत्री भाव, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से, सब सब पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, उसमें किसी को घटा नहीं सकते। उसमें फिर ऐसा नहीं कर सकते इसको छोड़कर, सब जीवों से किसी को छोड़ नहीं सकते, माइनस नहीं कर सकते। अब ये सब काम करने के बाद आप एकदम फ्री हो गए। अब सर लिखना के लिए जा रहे हैं आप, तो आपने जितने संबंध थे उनसे निवृत्ति पा ली है, और मन से भी आप बिल्कुल हल्के हो चुके हैं। अब कहाँ जाएंगे आप? गुरु के पास, क्योंकि गुरु के बिना कोई खेवटिया नहीं है, बेड़ा पार लगाने वाला नहीं है। गुरु के पास जाएंगे, तो गुरु के पास जाकर क्या करोगे? सबसे पहले जीवन में मैंने जो जो गलतियां की हैं, बहुत विस्तार मत करो, लेकिन जो जो विशेष प्रकट करने योग्य हो, जहां कषाय भाव से मेरे से त्रुटियां हुई हैं, उन सबको बता दो, गुरु से छिपाना मत। और अगर डर लगे बताने में तो फिर गुरु बनाना मत। क्या कह रहे? अगर ऐसा लगे कि इनको बताने के बाद ये क्या सोचेंगे, फिर मुझे ठुकरा तो नहीं देंगे कि अरे तुम इतने पापी निकले, मैं तो तुम्हें तो बहुत अच्छा शरीफ समझता था, फिर तुम इतने बदमाश निकले, चलो रफा हो जाओ मेरे सामने से, निकल जाओ मेरी आंखों के नजरों के सामने, कभी मत आना। नहीं, ऐसा नहीं। गुरु का हृदय बहुत विशाल होता है, वो जानते हैं कि संसार के एक एक प्राणी से अनेक अपराध होते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि अपराध भी पर्याय है, क्षणिक पर्याय है। उस समय कषाय भाव से वैसे अपराध हुए हैं, और हो सकता है आज भी उन कषायों का संस्कार अंदर चल रहा हो, लेकिन ये चूंकि मेरे चरणों में आया है तो मेरा कर्तव्य इससे नफरत करना नहीं किंतु इसको सुधारना है, इसके कल्याण की भावना। इसके पापों को जानने के बाद भी यदि मेरे अंदर नहीं आती तो मैं गुरु पद के योग्य नहीं। इतना विशाल हृदय होता है गुरु का कि वज्र अपराधी भी अगर आ जाए सामने तो भी ये नरक जाएगा, ऐसे भाव न करते हुए वो सोचते हैं कि इसने नरक जाने योग्य कर्म तो किया है, लेकिन मुझे कोई ऐसा उपाय करना है कि इसकी सदगति हो। कितनी अपार करुणा होती है गुरु के हृदय में, कितना वात्सल्य होता है। तो वो उसको सन्मार्ग दर्शाते हैं। तो ऐसे गुरु के पास जाकर, गुरु को चुनने में समय लग जाने दो, कोई चिंता नहीं है, लेकिन अगर सही गुरु मिल गए तो फिर जीवन निहाल हो जाए। तो सर्वम एनह आलोच, अपने सब अपराध गुरु के सामने प्रकट कर दो, जो जो मैंने खुद किए हैं वो, और खुद किए हुए अपराधों को पूरी तरह प्रकट कर दिया। इसके बाद जो जो मैंने दूसरों से पाप कराए हैं वो बता देना, क्या कि छुटकारा नहीं है, पूरा हिसाब पूरा चुकता करना है। संलेखना कोई इतनी सरल वस्तु नहीं है। भगवान कहते हैं कि संलेखना तो तपस्या का फल है, इसलिए वहां जाकर के पहले तो अपने जो जो गलतियां थी वो बता दी, उसके बाद जो गलतियां अपन ने दूसरों से कराई है वो भी बता दो। कुछ नहीं, आप अगर तीसरे को नहीं बताना चाहते तो मत बताओ किसी को, लेकिन गुरु को तो बताना ही है। सर्वमेव, सब अपराध बता दो, एक भी छुपाना नहीं। अब ये नहीं सोचना कि मैंने तो पांच बड़े बड़े अपराध किए हैं, तीन बता देते हैं चलो पासिंग मार्क्स तो मिल जाएंगे। ये याद रखना कि इस मोक्ष मार्ग में 99% अगर नंबर मिले हैं तो भी नापास है, फेल है। ये हमारे गुरु महाराज कहते हैं आचार्य, 99% नंबर मिले नापास हो गया, मोक्ष नहीं मिला। सुकुमार स्वामी ने कितनी तपस्या की, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, और भी कई मुनिराज थे, पर जो नोक मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाए, जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि अभी 100 में से 100 नंबर नहीं आए। अब अपनी तुलना करें अपन, तो फिर अपन तो पता नहीं कहाँ 30 या फिर 20 में कहीं अटके होंगे नापास में, लेकिन वो तो बहुत अच्छे, जिसको अपन बोलते हैं ना हायर सेकंड डिवीजन, तो वो हायर सेकंड डिवीजन फर्स्ट डिवीजन नहीं, वो स्थिति है कि वो बहुत आगे हैं, लेकिन चूंकि 100 में 100 नंबर नहीं आए, इसलिए अभी उनको भाव धारण करना शेष है। तो सब अपराधों को बता दो, और इसके पश्चात जो कराए हैं वो भी बता दिए, और फिर अपराध करने वालों का जो समर्थन किया है, न खुद किया अपराध न किसी से कराया, लेकिन जो कर रहा था उसको मन से वचन से अथवा शरीर की चेष्टा से समर्थन दिया हो तो भी गुरु के सामने प्रकट कर देना कि ऐसी भी मेरे से भूल हुई है, मैंने अपराध नहीं किया, लेकिन अपराध करने वाले का समर्थन किया। कई बार टेलीविजन देखते समय ऐसी स्थिति होती है, कोई मार काट की घटना आ रही है, उसमें तो उसमें एक ऐसी स्टोरी आ जाती है कभी कोई, कि उस स्टोरी में मनुष्य का मन उलझ जाता है, और फिर उस स्टोरी में जो दुष्ट होता है उसका जब अंत में नाश होता है, तब तो बहुत सारे लोग एक मतलब एक चैन की सांस लेते हैं, कुछ लोग तालियां भी बजाते हैं, जैसे कुश्ती का शो देख रहे हैं कोई, और इंडिया की टीम वाला अगर जीत रहा है, पाकिस्तान वाले को रिंग के बाहर फेंक दिया उसने, तो फिर यहां हिंदुस्तान में करोड़ों लोग तालियां बजाकर कर्म का बंध एक साथ करते हैं, एक साथ सामूहिक कर्म बंध। कौन सा कर्म? पुण्य, साता या असाता? किसी की तकलीफ में हर्षित होना पाप का कारण है। तो ये सब मतलब ये तो छोटी छोटी बातें होगी, कई बड़ी बड़ी घटनाएं होती है अपने जीवन में। कई बार ऐसे भी प्रयोग करते हैं लोग कि सामने वाले का परिवार दुखों के सागर में डूब जाए, कई लोग तंत्र विद्या का प्रयोग करवाते हैं, कई लोग और कई कई प्रकार के उपाय करते हैं कि उसका अनिष्ट हो जाए, कभी रास्ते में एक्सीडेंट कराने की भी योजना बना लेते हैं, कभी उसको कुछ ऐसी चीज खिला देते हैं कि उस तकलीफ में आ जाए, कई प्रकार के प्रयोग करते हैं कषाय के कारण। तो बने जहां तक जीवन को निर्मल बनाए रखना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि अंत में निश्चित है कि ये सब अपराध करने के बाद अपने को तो चैन मिलने नहीं वाला, किसी अन्य को पीड़ा पहुंचाकर आज तक कोई सुखी नहीं हुआ। अनादिकाल से संसार का ये अटल नियम है कि किसी अन्य को पीड़ित करके अपन चैन की सांस नहीं ले सकते। वो कुछ भी कर रहा हो, वो दुर्जनता का बर्ताव कर रहा है, तो आपको दुर्जन बनने की आवश्यकता नहीं, आप नेकी की राह पर चलिए, सज्जन बने रहिए, एक दिन इसकी जीत होगी सत्य की, सज्जनता की। और आपको बार बार ये नहीं सोचना है कि देखो मैंने इस बार भी उसको छोड़ दिया, वो कितना पाप कमा रहा है, नरक नहीं तो त्रियंश में तो जाना ही पड़ेगा उसको, ये भी कष्ट है। क्यों उसका आहित सोचते हो? मैत्री भाव रखो, है बड़ा काम, थोड़ी शक्ति लगानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी लगाना ही हितकर। बराबर होगा अगर आपके भाव उसमें उस रूप है। नहीं वास्तविकता ना हो, लेकिन देखिए स्थापना निक्षेप से भी बंद होता है ना कर्मों को। देखो भाव निक्षेप से भी कर्म बंद होगा, नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव सभी से होता है। नहीं ऐसा, भाव का मतलब क्या है? रुचि। कभी कभी अरुचि से भी देखते हैं लोग। क्या होता है कि जैसे मान लो किसी को वैराग्य हो गया है, उसको दीक्षा लेने का विचार है 1 महीने बाद, लेकिन फिर भी घर में जब तक रह रहा है तो फिर घर वालों के समान उसको रहना पड़ता है। अब अगर 6 लोग टीवी बैठ बैठ करके देख रहे हैं और वो अगर अगल अलग से जाकर के माला फेरे तो फिर वो व्यवहार बिगड़ जाता है। वो ये नहीं चाहता कि व्यवहार बिगड़े, इसलिए चलो बैठ करके देख लो, लेकिन वो अनासक्त भाव से देखेगा। ये स्थिति बनती है गृहस्थ जीवन में कि वैराग्य होने के बाद वो सारे कार्य कर रहा है उनके समान, बाकी रागियों के समान, लेकिन फिर भी अब उसकी आसक्ति नहीं है, अब उसमें उसको रस नहीं आ रहा है, कर रहा है सिर्फ निभाने के लिए ऊपर ऊपर से। ये तो है कि कर रहा है इसलिए उतना उसको बंद तो होगा करने का, लेकिन वैसा प्रगाढ़ बंद नहीं होगा जैसा राग पूर्वक और आसक्ति पूर्वक करने पर होता है। पर है मन की बात, किसका मन। अब क्या होता है कि सुबह वैराग्य और शाम को राग हो जाता है, ये भी स्थिति है, मन बड़ा चंचल। सुबह सुबह सोचोगे एकदम आहा, एकदम चतुर्थ काल जैसे भाव है, और शाम को देखो दोपहर को 5 बजे और शाम को 6 काल में पहुंच जाते। इसलिए बार बार शुभ आलंबन गृहस्थ के लिए अनिवार्य है। प्रवचन सार अभी चल रहा है शाम को स्वाध्याय 4:30 से, तो उसमें आने वाली आगे गाथा कि गृहस्थ के लिए कोई चारा नहीं है। वो अगर शुभ आलंबन को नहीं अंगीकार करेगा तो उसका मन उसको दुर्गति में ले जाएगा, क्योंकि वातावरण इतना दूषित है कि दुर्गति के साधन हर कदम पर मिलते हैं और सदगति का साधन बड़ी मुश्किल से मिलता है। इसलिए बार बार उसको आलंबन लेना। कभी कोई ऐसे मन बिगड़ जाए तो फिर नवर्ण मुखर मंत्र पढ़ लो। कभी कोई ऐसा विचार आ जाए या फिर कुछ बोलने की ऐसी इच्छा हो जाए या मुंह से कोई शब्द निकल जाए, फिर 5 मिनट मौन रहो कि अगली बार जब ऐसा कोई शब्द निकलने को राजी हो, तैयार हो, तो मैं और सावधान रह सकूं। नमोकार मंत्र पढ़। तो ये सब प्रैक्टिकल करने की चीजें, सुन करके अच्छी चीजें सुनने मिल गई, चलो अच्छा रहा, उतना पुण्य मुझे मिल गया मिल गया, लेकिन उस पुण्य को आप सुरक्षित रखोगे क्या? अभी जो सुनकर के पुण्य कमा रहे हैं वो फिर बाद में जो कुछ उपद्रव करते हैं आप जाकर वहां खुरापात गेट के बाहर, तो उससे पूरा साफ हो जाता है। तो इसलिए उसको प्रैक्टिकल में लाना है, बार 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 अपने जीवन को सदाचारमय बनाना है, क्योंकि सदाचार ही आगे की श्रेणियों में पहुंचने में सहायक है। तो पूरे अपराध गुरु के सामने बता दो, खुद किए हो तो वो बता दो, कराए हो तो बता दो, समर्थन दिया हो तो भी बता दो, निर्व्याज, उसमें किसी प्रकार का कपट नहीं रखना, क्योंकि कपट पूर्वक किया हुआ कार्य हानिकारक है। ये मोक्ष मार्ग में ईमानदारी पहली शर्त। अगर आप ईमानदार नहीं है तो अभी बाद में आना मोक्ष मार्ग पर, कोई उतावली नहीं है, पहले ईमानदार बन जाओ। सत्यनिष्ठा, हमने कभी कहा होगा कि दीक्षार्थी के अंदर भी 5 गुण आवश्यक है। उसमें पहला है सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, फिर वैराग्य भी जरूरी है, सहनशीलता भी चाहिए, और किसी पर भार नहीं होना चाहिए उस वैरागी दीक्षार्थी को, कि किसी अन्य पर भार होने पर कलुषता आती है, उसके अंदर भी आती है और अपने अंदर पराधीनता आती है। और 5वीं बात थी कि अपने ऐसे पुण्य उदय में हो जो दीक्षा के योग्य हो, क्योंकि बिना पुण्य के दीक्षा नहीं होती, और उस पुण्य की पहचान अपनी पत्रिका के दीक्षा योग से जानी जा सकती है। हस्तरेखाओं से कुछ ऐसे योग दिए हुए हैं जैन शास्त्रों में, ये सब चीजें फालतू नहीं है, ये तो लोग जो दुरुपयोग करते हैं उनके कारण विद्या बदनाम होती है। निमित्त ज्ञान से जो दीक्षा के योग्य है उस योग्यता को जान करके दीक्षा लेना हितकर। तो इतना कार्य कर लेने के बाद फिर आ मरणस्थायी महाव्रतम आरोपयेत। फिर गुरु से कह देना कि हे गुरुवर, अब आजीवन मुझे महाव्रत दीजिए, आप मुझे महाव्रत आरोपित कीजिए, मुझे संस्कारित कीजिए महाव्रतों से। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना, इन सब से अपने आप को शुद्ध बनाकर फिर गुरु चरणों में चार आराधनाओं की ये भूमिका बन गई। इसके आगे क्या स्थिति बनती, देखिए, सब कुछ छोड़ने के बाद, महाव्रत धारण करने के बाद भी मन कभी कभी कुछ खेल, कुछ अजीब से कुछ हरकतें करता है, तो उनका निवारण कैसे करना वो आगे बताएंगे। कौन सा? हाँ, और अप्रत्याख्यान वर्ण का जो संस्कार काल होता है कषाय का, जो व्रतियों में भी उदय में रहती है अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय, आर्यिकाओं में भी रहती है, तो उसकी अवधि 15 दिन अंतिम है। 15 दिन के आगे नहीं चल सकते, वो ऑटोमेटिक क्षमा हो जाती 15 दिन। और संज्वलन कषाय जो रहती केवल मुनियों में रहती उदय में, वो अंतर्मुहूर्त उसका काल होता है, जल की रेखा के समान, फिर वो शांत हो जाती। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा जो कहीं कहीं वाक्य पद माता छूट गई, सरस्वती ने ही को कृपया क्षमा करे और मुझे कैवल्य नाम में आनंद करे, वांछित पद दाते चिंतामणि सब शमात तेरा, मुझको मेरे पता मेरा, ओ विमानि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको, ये और ये पा जाऊं मां मोक्ष महाशुभ को।
हेलो।